नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। न्यूज ब्रॉडकास्टर बीबीसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने FEMA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कंपनी पर फॉरेन एक्सचेंज उल्लंघन का आरोप लगाया गया। समाचार एजेंसी PTI ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी BBC इंडिया के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन का मामला दर्ज किया। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी फंडिंग में अनियमितता के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत BBC के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले फरवरी 2023 में आयकर विभाग ने नई दिल्ली मुंबई में BBC के परिसरों में सर्वे किया था, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों का गैर अनुपालन और मुनाफे का ट्रांसफर किया गया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश का निर्यात बीते वर्ष 2022-23 में 6% बढ़कर रिकॉर्ड $447 अरब रहा। मुख्य रूप से पेट्रोलियम, औषधि, रसायन तथा समुद्री उत्पादों के क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन से निर्यात अच्छा रहा। इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में निर्यात $422 अरब था। देश का आयात भी आलोच्य वित्त वर्ष में 16.5% बढ़कर $714 अरब रहा, जो एक साल पहले 2021-22 में $613 अरब था। गोयल ने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात नई ऊंचाई पर पहुंचा है और 2022-23 में 14% बढ़कर $770 अरब रहा, जो एक साल पहले $676 अरब था। मंत्री ने रोम में संवाददाताओं से कहा, भारत के निर्यात का प्रदर्शन शानदार रहा। देश से कुल निर्यात 2022-23 में $770 अरब की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ये 14% अधिक है। 2020 में ये $500 अरब तथा 2021-22 में $676 अरब था। रसायन बनाने वाली कंपनी अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड ने जापान की बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ 1500 करोड़ रुपए के 3 उच्च मूल्य वाले विशेष रसायनों के लिए आशय पत्र हस्ताक्षर किए हैं। अनुपम रसायन के प्रबंध निदेशक आनंद देसाई ने बृहस्पतिवार को कहा कि ये उत्पाद हमारी मौजूदा विनिर्माण सुविधाओं में बनाया जाएगा। देसाई ने कहा, हमें घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने अपने पोर्टफोलियो में 3 नए उत्पाद जोड़ने के लिए एक प्रमुख जापानी कंपनी के साथ साझेदारी की है। इन 3 उत्पादों का उपयोग विशिष्ट पॉलीमर और तरल क्रिस्टल के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाएगा। कंपनी इन उत्पादों के लिए भारत से बाहर एकमात्र आपूर्तिकर्ता होगी। यूरोपीय और अमेरिकी मांग में गिरावट के बावजूद मार्च में चीन का निर्यात अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। चीन के सीमा शुल्क विभाग के आंकड़ों के अनुसार एक साल पहले की तुलना में मार्च में चीन का निर्यात 14.8% बढ़कर $315.6 अरब हो गया। जनवरी और फरवरी में चीन का निर्यात 6.8% घटा था। वहीं चीन का आयात मार्च में 1.4% घटकर $227.4 अरब रह गया। इससे पिछले 2 माह में चीन का आयात 10.2% घटा था। चीन का राजनीतिक रूप से संवेदनशील वैश्विक व्यापार अधिशेष माह के दौरान एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 82% बढ़कर $88.2 अरब हो गया। फेडरल रिजर्व और अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने से अमेरिका और 27 देशों के यूरोपीय संघ को चीन का निर्यात घटा है। हालांकि कनाडा, इंडोनेशिया, रूस और अन्य बाजारों को निर्यात में 2 अंक की वृद्धि से इसकी भरपाई हो गई। भारत और इटली ने नई दिल्ली और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता की प्रगति पर चर्चा की है और इसके जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई है। वाणिज्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। पिछले साल जनवरी में भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते, निवेश संरक्षण और भौगोलिक संकेतक के बीच बातचीत फिर से शुरू की। इटली EU का सदस्य है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री एंटोनियो ताजानी के बीच 12 अप्रैल को हुई बैठक में ये मुद्दा उठा। एक बयान में कहा गया है, दोनों मंत्रियों ने एक मुक्त, संतुलित और निष्पक्ष मुक्त व्यापार समझौते को रेखांकित करते हुए इसके जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई। दोनों नेताओं के बीच सितंबर के अंतिम सप्ताह में रोम में आर्थिक सहयोग पर संयुक्त आयोग के अगले सत्र के आयोजन पर भी सहमति बनी। ताजानी ने सहयोग बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, रक्षा और कृषि जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में एक संयुक्त कार्य समूह के गठन का सुझाव दिया। 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इनवॉइस को 7 दिन के अंदर चालान पंजीकरण पोर्टल पर डालना होगा। माल एवं सेवा कर नेटवर्क ने बृहस्पतिवार को कहा कि ये व्यवस्था 1 मई से लागू होने जा रही है। इस तरह का चालान जारी होने के 7 दिन के भीतर ऐसी कंपनियों को इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में IRP पर अपलोड करना होगा। अभी कंपनियां इस तरह के इनवॉइस को वर्तमान तिथि पर डालती हैं। इसमें इनवॉइस को जारी करने की तिथि से कोई लेना देना नहीं होता। करदाताओं के लिए एक परामर्श में GST नेटवर्क ने कहा कि सरकार ने 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के सालाना कारोबार वाले करदाताओं के लिए पुराने चालान को ई इनवॉइस IRP पोर्टल पर रिपोर्ट करने की समय सीमा तय करने का फैसला किया। GSTN ने कहा कि समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस श्रेणी के करदाताओं को 7 दिन से अधिक पुराने इनवॉइस को रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं होगी। करदाताओं को इसके लिए पर्याप्त समय देने के लिए इस नए फॉर्मेट को 1 मई 2023 से क्रियान्वित किया जाएगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।